السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم، إن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. وردنا ورد أنا، وردنا ورد أنا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور جو ہم سب کو زندگی میں مختلف مواقع پہ اپنے آپ کو ہم کس طرح اس چیز سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں، اس کے لیے رہنمائی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دی ہوئی رہنمائی سے بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنی زندگی کو اسی طرح سے گزاریں جیسے اللہ نے حکم دیا. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ اختتام پذیر ہے اور عید کی آمد آمد ہے. اب یہ عید ایسی عید ہے کہ لفظ عید سنتے ہی انسان کے دل میں ایک خوشی کا احساس آنے لگتا ہے، اور وہ اپنے اندر کچھ نئے جذبے، کچھ نئی امنگیں محسوس کرتا ہے. عید کی صبح نمودار ہو جائے گی، مسلمان عید کی خوشیوں سے سرشار ایک دوسرے سے ملنے کی تیاریوں میں ہوں گے. خوشی اور مسرت کا دن ہوگا، جشن منانے کا دن، ایک دوسرے سے ملنے اور مبارکباد لینے کا دن آنے والا ہے. عید کا دن اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی تکبیر اور اس کی بڑائی بیان کرنے کا دن ہے. اللہ کے ہاں سر اپنے ماتھے کو اس کے سامنے سجدہ کرنے کا دن ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے توفیق دی کہ میں نے اس ذمہ داری کو نبھانے کی اپنے طور پہ کوشش کی جتنا میں کر سکا، اور آج مجھے اس فریضے کی ادائیگی کے اوپر شکر کرتے ہوئے توفیق دے کہ میں اس دن کو آج تیرے ہی حکموں کے مطابق بسر کر سکوں. اور ایک لفظ جو بہت بولا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ عید مبارک ہو، تم کو مبارک ہو. یہ کیا ہے؟ ایک دعا ہے. ہم جب کسی کو کہتے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو، تو کیا اس وقت ہمارے تصور میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم کسی کو مبارکباد دے رہے ہیں؟ کیا یہ ایک رسمی جملہ تو نہیں بن گیا؟ کیا یہ بس ایسا ہی تو ایک بات نہیں جیسی ہم دن میں بہت ساری باتیں کرتے رہتے ہیں، روح کے بغیر خالی باتیں؟ اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. کسی کو یہ کہنا کہ تمہیں مبارک ہو، جب اس کے اندر دل کے جذبات بھی شامل ہو جائیں تو اس چیز کے اندر مزید حسن پیدا ہوتا ہے. اور اسلام کا مزاج کتنا خوبصورت ہے کہ اس نے ہمیں ایسے خوبصورت جملے سکھائے، ایسے خوبصورت دعائیہ کلمات سکھائے کہ جس کی وجہ سے ہم دوسروں کو خوش بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم दूसरों को दुआएं भी दें। मज़ीद और उनकी नेम ज़िंदगी में अल्लाह की तरफ से नेमतें मिलें, खुशियां हों। जब भी कभी आप ईद के दिन किसी को कहें कि मुबारक हो, तो फिर ज़रूर एक लम्हे के लिए सोचिए कि मैंने क्या कहा। और अगर कोई आपको दे, तो अपने दिल में ये जज्बात पैदा कीजिए कि इस शख्स ने मुझे बहुत प्यारी दुआ दी है। क्योंकि अमूमन मैंने देखा है कि ये लफ्ज़ हर खुशी के मौके पे बेसाख्ता ज़ुबान पे आ जाता है, और इसी के ज़रिए फिर दूसरे की खुशी में शिरकत का इजहार भी किया जाता है। लेकिन इतनी कसरत से ये जुमला बोला जाता है कि अब एक रस्म बन गई, अपनी मानवीय अहमियत खो गया ये, और बस एक आदत के मुताबिक करते हैं और तवज्जो भी नहीं देते। हालांकि ये तो एक दुआ थी, खुशी की, बरकतों की। अल्लाह तुम्हें बरकत दे। बरकत किसको कहते हैं, इसको समझेंगे थोड़ा सा, और इंशाअल्लाह ताला फिर हमने जब ईद की मुबारक देनी है, तो इन तमाम चीज़ों को जहन में रखना है कि ईद की मुबारक देते वक्त हमने क्या सोचना है। मुबारक हो। हकीकत क्या है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें जितने भी वसाइल दिए हैं अपने जिस्मों को आराम देने के, राहत देने के, और इन्हीं को पाने की कोशिश में सुबह शाम इंसान मेहनत करता है। घर हो, रुपया पैसा हो, जायदादें हो, नौकर चाकर, गाड़ियाँ, हवाई जहाज, अजीज अकारब, लेकिन बाज़ दफ़ा इन सब चीज़ों को पा तो लेता है, लेकिन उसको चैन नहीं मिलता, उसकी ज़िंदगी में खुशी नहीं आती। और वो चीज़ जो दिल का सुकून और दिल की खुशी बन के सामने आए, वो नहीं मैसर होती। इंसान उस चीज़ से वो लुत्फ़ नहीं पाता जो उसका ख्याल होता है। तो इसका मतलब ये है कि मादी चीज़ों से बरकत नहीं मिलती, खुशी नहीं मिलती। बड़े बड़े घर बना लेना, हर वक्त इधर से उधर के सफ़र, किसी के दस्तरखान पे लजीज खानों का सज जाना, ताज़ा और कीमती फलों का आ जाना, इस चीज़ की दलील नहीं कि उस शख्स की ज़िंदगी में बरकत भी आ चुकी। बाज़ दफ़ा बज़ाहर माहौल बड़ा खूबसूरत होता है, लेकिन उसके अंदर दिल नहीं लगता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो इंसान को उससे मज़ा नहीं लेने देती। तो फिर क्या हुआ, कोई ना कोई ऐसी परेशानी दिल को लगी हुई, कोई दिमाग के अंदर ऐसी सोच है कि जिसने भूख ख़त्म कर दी। तमाम खाने हैं, खा नहीं सकते, लज्जत नहीं। रहने के लिए आलीशान मकान है, बेहतरीन आरामगाह, आपका बेडरूम जदीद सामान से आरास्ता, नरम गद्दे, सॉफ्ट मैट्रेसेस, एसी, ख्वाब आवर माहौल हो सकता है, लेकिन जब इंसान उस पर लेटता है तो नींद आंखों से दूर, हजारों जतन करके भी सो नहीं पाता, सारी रात करवटें लेके गुजार देता है। तो गोया कि इस शख्स के पास आराम और आसाइश के तो सारे सामान हुए, लेकिन इसे आराम न मिल सका, पूरी रात आंखों में कट गई। इसके बरक्स कभी आपने देखा हो कि एक शख्स जो मेहनत करता है, मजदूरी करता है, किसान है, 4-5 घंटे की मशक्क़त के बाद जब अपने सामने खाने के लिए अपनी पोटली खोलता है, जिसमें बज़ाहर सुबह की पकी हुई मामूली सी साग रोटी है ठंडी, लेकिन इसको उसको खाने में मज़ा महसूस होता है, लज्जत आने लगती है, भूख उसको देख के और उसके अंदर भरने भटकने लगती है और भूख आने लगती है। फिर अपनी खुरदरी चारपाई पे बैठता है, और दुनिया माफिया से बेखबर हो जाता है। वो नींद जो गर्म बिस्तरों पे नहीं आती, वो उसको इस चारपाई पे आती है। क्यों? कि सारे दिन की मेहनत के बाद थका था, सादा सा खाना मिला, खुशी से खाया। जब नींद अच्छी आई तो सुबह को उठा तो बिल्कुल फ्रेश था, चाको चौबंद। न कमरे में एसी था कि जिसकी वजह से और गहरी नींद आने लगती, कि जिसकी वजह से हो सकता है कि फजर भी कजा होने लगे। आखिर क्या चीज़ है जिसने इसको सुकून दिया, खुशी दी, ये सोचने की बात है। इसकी जिंदगी के अंदर इतना सुकून क्या है? एक शख्स सब कुछ होने के बावजूद सुकून की नेमत से महरूम, और दूसरा बहुत मामूली होने के बावजूद जहनी तौर पे मुतमईन है। सोचिए जरा आप इसको, और इस पे चंद लम्हे के लिए आप गौर करें। आखिर इसकी आपके ख्याल में वजह क्या हो सकती है?
हम बात कर रहे थे कि फिर असल बरकत क्या है। हम अपनी जिंदगी में दो मुख्तलिफ किस्म के रवैये हर लम्हे देखते हैं और महसूस करते हैं कि इंसान अपनी जिंदगी गुजारने में दो मुख्तलिफ तरह के रवैयों का इख्तियार है। तो असल में किसी को ये कहना कि तुम्हें मुबारक हो, ये इस चीज़ की दुआ है कि अल्लाह ने तुम्हें जो नेमतें दी हैं तुम उसको एंजॉय कर सको और इसके ज़रिए अल्लाह की रज़ा हासिल कर सको। जब अल्लाह ताला इंसान को कुछ देता है ना, तो फिर उसके बाद बास दफ़ा इंसानों की एक ऐसी अक्सरियत है कि जो उस नेमत को पाके फिर रब को भूल जाती हैं, या उन चीज़ों को पाके भी खुशी नहीं महसूस करते। तो किसी को जब ये कहा जाए कि तुम्हें मुबारक हो, तो असल में उसको ये कहा जाता है कि तुम इस चीज़ को अच्छे तरीके से रखो और तुम्हारा रब भी तुमसे राज़ी रहे। थोड़ी चीज़ तुम्हें काफ़ी हो जाए। ये जो लफ्ज़ बरकत है ना, ये बरका से होता है, बरका। और बरका का मानी ही क्या होता है? कि थोड़ी चीज़ भी काफ़ी हो जाए। अरबी में ऊँट के बैठने को बरका कहते थे। क्यों? कि उनके यहाँ ऊँट का बहुत गहरा ताल्लुक था उनकी ज़िंदगियों में, तो लिहाजा कहीं अगर ऊँट बैठ जाता तो वो जगह उनके लिए बरकत वाली होती। और इसकी दलील शायद आपके जहन में कोई बात मिली हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने सफ़र में थे हिजरत के, और आपने क्या कहा कि मैं उसी के घर पे क्याम करूँगा जहाँ मेरी ऊँटनी बैठ जाएगी। और ये सआदत फिर किसको नसीब हुई थी? अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। तो गोया के वो उनके लिए एक बरकत का बायस हो गया। और कैसी बरकत मिली कि क़यामत तक उनका नाम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले मेज़बान के नाम पे लेते रहेंगे कि इस शहर में आने के बाद पहली दफ़ा इनकी मेहमानी अबू अय्यूब अंसारी ने की। तो लिहाजा बात क्या है कि हम किसी को ईद की मुबारक कहें तो साथ ये दुआ भी दें कि अल्लाह अल्लाह तुम्हें ज़ाहरी चीज़ें भी दे और असल में इसकी रूहानियत भी कायम हो, तुम इसको बरतना नसीब करो। पहले दौर में एक जुमला बहुत प्यारा बोला करते थे लोग, गो कि आज अगर हम बोलें तो कुछ लोगों को तो समझ भी नहीं आएगा। क्या कहते थे? दूधो नहाओ पोतों खिलाओ। किसी को मालूम हुआ इसका मतलब? दो लफ्ज हैं इसमें, यानी तुम्हारे पास इतना माल हो कि तुम दूध से नहाओ, यानी कोई नहा तो नहीं सकता दुनिया में, लेकिन एक दुआ है कसरत की वजह से कि पानी की वजह से बजाय दूध से नहाओ और पोतों खिलाओ, इतनी लंबी उम्र मिले कि तुम अपने पोतों को भी खिला सको। दुनिया के असबाब में ये दो ही चीज़ें हैं जिसकी हमेशा तड़प की जाती है, और वो दोनों इसमें होती थी। और जो बुज़ुर्ग अपने बच्चों को दिया करते थे, मैं सोचती हूँ कि वो ये दुआ क्यों नहीं देते थे कि अल्लाह तुम्हें कुरान की ठंडक दे दे, इसको तुम्हारे दिल का सुरूर बना दे। शायद इसलिए कि भोले भाले वक्त थे और उस वक्त यही चीज़ें किसी के खुशी का सबब समझी जाती थी कि दुनियावी चीज़ें उसके पास बहुत सारी हो जाएं और वो फिर उसी चीज़ को, उसी इंसान को फिर कामयाब समझते थे। तो लिहाजा किसी को भी अब आपने काम करना है कि इस साल जितनों को भी मुबारक कहेंगे, मुबारक हो, तो आपने शऊर के साथ कहना है। अब फर्क होगा, जब आप शऊर से कहेंगे ना, तो आप देखेंगे कि लफ्ज़ों की अदायगी में भी आपके तब्दीली आ जाएगी। आप उसी तरह बे सोचे समझे नहीं बोलेंगे जैसे कि हम आम तौर पे बोलते हैं। और जब कोई आपको देगा तो आपने उस वक्त भी इस चीज़ को सोचना है कि इसने मुझे कितनी प्यारी दुआ दी। फिर आप देखेंगे कि हकीकी मोहब्बतें पैदा होती हैं, लोग आपको वाकई अपने मुसलमान भाई बहन लगेंगे। वरना तो याद रखिए, तकल्लुफन बोले हुए लफ्ज़ दिल के अंदर वो जज्बात नहीं पैदा कर सकते जो कि एक सच्चा हकीकी कलेमा दिल में कर सकता है। तो ये तो था थोड़ा सा मुबारक हो इस लफ्ज़ का तारुफ। लेकिन ईद की मुबारक किसके लिए, ये है दूसरा सवाल जो आज हम सबको अपने आप से करना है। क्या हर एक के लिए ईद मुबारक होगी? क्या हर एक डिजर्व करता है इस दुआ के लिए? ईद किसकी है जिसने रब को राजी कर लिया, जिसको ये परवाना मिल गया कि या अयतुहन नफ्सुल मुतमईना इर्जे इला रब्बी की राधियतम मर्दिया, ए इत्मीनान वाली रूह लौट अपने रब की तरफ, उसके नेक बंदों में दाखिल हो जा, इस हाल में कि तू उससे राजी और वो तुझसे राजी। बंदे मोमिन का सबसे बड़ा गम ही ये है कि मेरा रब मुझसे राजी है कि नहीं। इसी के लिए उसकी तहजुदें हैं, इसी के लिए उसकी तरावियां हैं, इसी के लिए उसकी सहरियां हैं और उसकी इफ्तारियां हैं, और इसी के लिए है उसका लोगों को ईद मुबारक कहना, इसी के लिए उसका है ईद की नमाज के लिए भाग दौड़ के घर से जाना कि मुझे इस बात का यकीन आ जाए कि मेरा रब मुझसे राजी है। रमजान का महीना आया और आप आके जाने वाला है। कुछ लोगों ने इससे बेहतरीन फायदा उठाया और कुछ सोते ही रहे, कुछ ने खा खा के इसको मनाया और कुछ ने उन सुन्नतों को जिंदा करने की कोशिश की जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में थी। सादगी, खजूर, पानी, कई कई दिन तक जिस घर में चूल्हा न जले, रमजान में क्या हालत होगी उनकी। कुछ ने सिर्फ सारे साल से ज्यादा इस महीने में खाना इसी को रोजा समझा, और कुछ ने इस वक्त इस महीने में एक एक मिनट को अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल करना सीखा, इस किताब को पढ़ने की कोशिश की। क्या दोनों की ईद एक जैसी होगी? क्या बाकी दोनों एक ही तरह की मुबारकबाद के हकदार हैं? ये अब हम सब खुद अपने बारे में सोचेंगे। पूछिए अपने आप से, हमने क्या पाया? इस ग्लास में से कितने घूंट भरे जो हमारे सामने भर के रखा गया था? 30 मुख्तलिफ हिस्सों में बटा हुआ ये महीना एक एक दिन हमसे तकाजा करता है। क्या खोया और क्या पाया? क्या वाकई इस नेकियों के मौसम बहार से फायदा उठा लिया? क्या इस हदीस के मुताबिक कि जिसकी जिंदगी में रमज़ान का महीना आया और वो रब को राज़ी ना कर सका, फिर वो अल्लाह की रहमत से दूर है। क्या हमने रब को राज़ी कर लिया? क्या ये शऊर ज़िंदगी में आ गया कि रब की रज़ा असल में मेरी ज़िंदगी की मताए तमाम है? हम सब ने दौरे कुरान किया, अक्सरियत ने हम में से क्यों किया? इसका नस्बुलैन क्या है? क्या बनाना चाहता रब हमको? इबादुर रहमान, रहमान के बंदे बन जाओ। कैसे बनता है इंसान रब का बंदा? क्या जराए हैं? सबर और कुरान। सबर सीखा रमजान में और कुरान से ताल्लुक जोड़ा। मकसद क्या है? अपनी इस्लाह और रजाए इलाही का हसूल। मैंने अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाना है और अपने रब की रजा हासिल करनी है। फिर इस नस्बुलैन का हक क्या है? कैसे अदा हो ये अल्लाह का पैगाम उसके बंदों तक पहुंचा के? इसी से बात बनेगी। इस वक्त बहुत ही मुनासिब मालूम हो रहा है मुझे कि अगर हम सब खुद एहतसाबी कर लें, चंद सवालात लिखते हैं, फिर उसका जवाब बाद में लिखेंगे। बहुत फ़ायदा होगा आपको अगर आपने अपने सामने ये एक लिस्ट बना ली, तो आप देखेंगे कि आप ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे कि वाकई मैं कहाँ खड़ी हूँ, इस महीने ने मुझे क्या दिया। मैं थोड़ा सा रुक रुक के बोलूँगी ताकि आप लिख सकें। मेरा दिल है जो भी इस लेक्चर को सुने वो ज़रूर ही अपना एहतसाब करें। सबसे पहले क्या सोचना है और फिर बाद में उसका जवाब लिखना। अगर आप अपने सामने पेज पे पॉइंट्स में ये बातें लिख लें जो भी मैं बोलूँगी, हर जुमला एक लाइन में, बस अगला जुमला नई लाइन में, चाहें तो उसको नंबरिंग कर दें 1 2 करके, और उसके आगे वाला हिस्सा जो बचेगा लाइन का उसमें 3 लफ्ज़ लिख लें पहली लाइन पे, हाँ नहीं कोशिश। सवाल हाँ में हो तो हाँ के नीचे क्लिक कर लें, नहीं था तो नहीं, और अगर कोशिश की थी तो वहाँ लगा लें। और फिर इंशाल्लाह ताला जब आप इस लिस्ट को चेक करेंगे तो और किसी को ना लगे लेकिन आपको ज़रूर पता चलेगा कि मैंने क्या किया। और अगर कहीं कमी होगी, नहीं है, तो उसको कोशिश के दर्जे में लाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, और अगर कोशिश वाला दर्जा था तो उसको हाँ में लेके जाएंगे। और फिर आप खुद अपने आप को मार्क्स भी देंगे, कितने हाँ हैं, कितने नहीं और कितनों की कोशिश है। ये लिस्ट इंशाल्लाह आपके जहन को खोल देगी, आप अपने आप को खुद डिस्कवर करेंगे। तो चलिए लिखिए। सबसे पहली बात जो हमने सोचनी है वो क्या कि क्या इस दौरे कुरान में शमूलियत पर मैंने अल्लाह सुबहान तआला का शुक्रिया अदा किया? शुक्र किया मैंने इस पे? क्योंकि शुक्र जो है ना, ये अमल के रास्ते खोलता है। लाइन शकर तुम ला अजीदन्नकुम, तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। फिर अगली लाइन में लिखिए, दौरे कुरान जैसी नेमत मिलने पर इससे भरपूर फायदा उठाया? ये सब सवाल हैं, क्वेश्चन मार्क लगा ले आगे। आगे, कुरान पढ़कर मेरे दिल में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ी? क्या सब्र जैसी सिफत में बेहतरी आई? क्या शुक्र की कैफियत में इजाफा हुआ? क्या मेरी इबादत में खुशू पैदा हुआ? क्या मेरी दुआओं और अज़कार में इजाफा हुआ? क्या अब मैं लघवियात से बचने की कोशिश करती हूँ यानी बचती हूँ? अब आगे आप खुद ही लिखेंगे जवाब में। क्या वक्त की अहमियत का एहसास हुआ मुझे? क्या मैं आयते तदब्बुर पर गौर करती हूँ यानी जो तरीका सीखा क्या वाकई फिर उस पर अमल करती हूँ? बहसियत मुसलमान कौली और फेली शहादत देने में कहाँ खड़ी हूँ? क्या मैंने यानी आसान कर लें इसको यानी इस दीन के पैगाम को अपनी जुबान से कितना आगे दे रही हूँ और अपने अमल से कितना बता रही हूँ? फिर अगला पॉइंट लिखिए, नफ्स की तीनों हालतों में अपने नफ्स की हालत को पहचान गई हूँ। कौन सी तीन हालतें? मुतमईना, अम्मारा, लवामा। यानी क्या मुझे पता चल गया कि मेरे अंदर कौन सा नफ्स मौजूद है, गलबा किसका है? अगला नुक्ता लिखिए, क्या मैं ख्वाहिश नफ्स को अल्लाह की रजा के लिए छोड़ सकती हूँ? क्या वाकई में अल्लाह की रजा के लिए छोड़ने को तैयार हूँ इन चीजों को? अगला पॉइंट लिखिए, अल्लाह की मोहब्बत में वक्त, सलाहियतें, जानो माल खर्च करने का जज्बा बढ़ा। फिर अगला नुक्ता लिखिए, दोस्ती और ताल्लुकात का मेयार बेहतर हुआ। इखराजात, जरूरियात, मामूलात और ताल्लुकात में एतदाल आया। दोबारा बोलती हूँ, इखराजात एक्सपेंसेस, जरूरियात नीड्स, मामूलात रूटीन और ताल्लुकात रिलेशंस में एतदाल आया, बैलेंस हुए। मैंने इंग्लिश में क्यों बोले ये लफ्ज़? क्योंकि बाज़ दफ़ा हम उर्दू के लफ्ज़ों से मानूस नहीं होते और उस तरह उसको अपने ऊपर तारी नहीं कर पाते जिस तरह के करने का हक होता है। फिर अगला नुक्ता, दोस्ती और ताल्लुकात का मेयार बेहतर हुआ। ये हो गया था पहले, ठीक है। दुनिया की हकीकत और आखरत की अहमियत समझ में आई। दौरे कुरान के बाद भी कुरान से ताल्लुक और फहम का इरादा किया। आइंदा रमज़ानुल मुबारक में बेहतरीन फहमे कुरान हासिल करने के लिए कोई प्रोग्राम बनाया यानी जो इस साल नहीं कर सके क्या अभी से नियत कर ली कि अगले साल इसको और अच्छे तरीके से करना? ये थे वो पॉइंट्स जो आपको मौका देंगे अपने एहतसाब का। और ये सब क्यों करें? इसलिए कि अल्लाह ने अपने दीन को गालिब करना है, उसका वादा है, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलखुदा व दीनिल हक्की लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल काफिरून और करिहल मुशरिकून। हमने इस लम्हे पे अपने आप से ये सवाल करना है कि अल्लाह के इस दीन के गलबे में मेरा कितना हिस्सा होगा? मैंने क्या नियत की है कि इस दीन के काम में क्या करूं? सोचना है ना इसको, और फिर उसके बाद अपनी सलाहियतों का जायज़ा लें, खुद को पहचानिए कि मैं कब, कहाँ, कैसे और क्यों कर अल्लाह के दीन की खिदमत कर सकती हूँ, और फिर उसके बाद सोचिए और उठ जाए, खड़े हो जाए। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए, आसान कर दे आपके लिए इस कोशिश को, और वो सारे अहद और वादे जो आपने खुद से किए इस रमज़ान में, अल्लाह ताला उनके पूरा करने में आपकी मदद फरमाए। इसके अलावा तो फिर यही है कि ये सब नहीं तो फिर गुज़र गया वक्त तो गुज़र गया, वापस नहीं आएगा। हमने अपने अमल से इन दिनों को वापस लाना है। हर वो साथी जो ये सोचे कि मैं उदास हूँ रमज़ान के जाने पे, किसने मना किया है कि रमज़ान को वापस बुला ले? बंदे मोमिन का रमज़ान साल में एक महीने का नहीं, सारे साल का रोज़ा है। ठीक है, एक महीने ज़ाहरी रोज़ा रखवाया जाता है और बाकी 11 महीने मानवी रोज़ा, हराम से रोज़ा, लगवियात से बचना। इसमें कुरान से ताल्लुक़ जुड़ा, किसने रोका कि बाकी 11 महीने मत जोड़ो? आप सोचें ना मैं क्यों उदास हूँ, लिखें इसकी वजह, लिखें क्या छूटा, रमज़ान के रोज़े छूट गए। हाँ, एक ही चीज़ है कि हर रोज़ नहीं रख सकते आप, आदतन आदत ना बनाएं, लेकिन आप रोज़ा जब चाहें एक दिन छोड़ के रख लें, आधी उदासी तो आपकी दूर हो जाएगी। सहरी में उठना अच्छा लगता था तो उठ जाइए अब भी, उस वक्त पराठे पका के खाने दही के साथ अच्छे थे तो बना लें। सारे दिन एक अजीब रूहानियत का एहसास है तो वो मिल जाएगा आपको, अभी भी हराम से रुकते रहें, आपके अंदर वो रूहानियत आने लगेगी, सब्र आने लगेगा, शुक्र का जज्बा पैदा होने लगेगा। और बाकी रह गया कि इफ्तारी के वक्त पकोड़े, समोसे, बिरयानी, अगर ये याद आ रहे हैं तो बना लें। तरावी पढ़ना अच्छा लगता था तो पढ़ लीजिए, शुरू हिस्से में नहीं तो रात के आखिरी हिस्से में पढ़ लें। क्या छूटा है? कुछ भी तो नहीं छूटा। रोज़ कुरान सुनते थे तो अब किसने मना किया? उससे ज़्यादा सुनना शुरू कर दें। रोज़ पारा पढ़ते थे तो अब भी पढ़ना शुरू कर दें, किसने रोका? और दौरे कुरान में कुरान के मानी को समझते थे तो नियत कर लें कि अल्लाह ताला हमें इससे भी ज़्यादा अच्छी तरह करने की तौफीक दे। ये तो हमारे हाथ में है कि हम क्या करते हैं, किस तरह करते हैं। मुझे एक मिसाल जहन में आ रही है, यानी मेरे जहन में एक तसव्वुर आता है कि रमज़ान आया और कुछ लोगों ने इसमें बहुत कुछ पाया और कुछ ने बिल्कुल नहीं पाया और कुछ ने कम पाया। मुझे ऐसे लगता है कि ज़िंदगी के सफ़र में कोई रेगिस्तान में खड़ा हो, तपती हुई रेत, आग बरसाती हुई ज़मीन, तेज़ शुआओं से दहकती हुई फ़ज़ा और जिस्म को झुलस देने वाली लौ, तेज़ चल रही, झक्कड़ चलते हैं, कहीं साया नहीं, कहीं पानी नहीं, कहीं भूख मिटाने का सामान नहीं, और किसी काफले ने वहां पड़ाव डाल दिया जो भूख और प्यास से बदहाल है, होंठ खुश्क, हलक में कांटे और बदन गर्मी की शिद्दत से तप रहा है। अब वो लोग जो इस सफर में अपने आप को किसी जगह रोकते हैं, उनके लिए थोड़ी सी साय की जगह मिलना भी एक नेमत है। पानी मिल गया तो वो उनके लिए सारे मशरूबात से ज़्यादा अच्छा। अब हर बंदा अपनी प्यास बुझाने, भूख मिटाने, आराम करने में मसरूफ है। अब आप सोचें कि इसमें हर बंदे का अमल फ़र्क हो जाएगा। कुछ लोग हैं वो दूरंदेश हैं, अपने अपने बर्तनों में पानी भर रहे हैं, खाने पीने का कुछ और सामान ले रहे हैं, सफ़र की थकन दूर करने के लिए, आने वाले सफ़र के लिए खुद को ताज़ा दम कर रहे हैं। क्यों कि न जाने अब साया और पानी कितने फासले के बाद मिलेगा, कब राहत और आराम का मौका मिलेगा। मगर इन काफिलों में कुछ नादान लोग भी हैं, लापरवाह बेफिक्रे, चंद घूंट पिए, दो चार नवाले खलक से उतारे और फिर लग गए मस्ती में, कुछ होश नहीं, भूल गए कि चंद लम्हों में काफिला चल पड़ेगा। फिर वही जानलेवा गर्मी, सूरज की तमाजत और लू के झक्कड़ होंगे। तपती धूप में, तपती रेत पर चलना पड़ेगा, कहीं साया ना होगा और न जाने कब फिर रुकना नसीब हो, और किसको पता कि कौन वहाँ तक पहुँच भी सकेगा। नहीं, रास्ते की मुश्किलात में कहीं रास्ते में ही उसकी जान न चली जाए। लेकिन अफसोस की बात क्या है कि ये गैर संजीदा लोग अपनी लापरवाही, बेफिक्री, गैर जिम्मेदारी से वो तमाम चीज़ें जो अगले सफ़र के लिए हासिल कर सकते थे यहाँ से, उन्हों को उसकी फिक्र नहीं। ना उन्होंने अपने बर्तनों में पानी भरा, न खाने का सामान रखा, और काफिला फिर चल पड़ा। हो सकता है कुछ घंटे आराम से गुजर जाए, लेकिन जरा सोचिए कि उसके बाद क्या होगा। फिर प्यास आएगी, फिर भूख लगेगी, फिर थकन होगी, और जब ये उन लोगों को वहाँ अपनी वो चीज़ें इस्तेमाल करता देखेंगे जिन्होंने इस से फ़ायदा उठाया पहले, इनके दिल पे क्या गुजरेगा। उनको पानी देख पीता देख के इनकी प्यास और न भड़केगी, उनके इत्मीनान को देख के ये और गैर मुतमईन न होंगे। तो असल बात क्या है कि जिंदगी का ये सफर है जो हम सब गुजार रहे हैं, चाहें या न चाहें, बड़ा अजीब सफर है। इंसानों के काफिले चल रहे हैं साथ साथ, उम्र के दुश्वार गुजार रास्ते हैं, हम भी इसी में चल रहे हैं, चाहे ना चाहे चलना पड़ेगा, सफर जारी है। कहीं शैतानी हवाओं के झुलसा देने वाले झक्कड़ भी आते हैं, कहीं नफ्स की बेचैन कर देने वाली ख्वाहिशात भी सताती हैं, आरजुओं और तमन्नाओं के जाल बुनने वाले भी आते हैं, कहीं गुनाहों के ऐसे हमले भी होते हैं जो इंसान को हिला के रख दें, और चारों तरफ माहौल भी ऐसा है कि जो इंसान को किसी अच्छी बात को सोचने की तौफीक ही ना दे। कौन बचेगा इन मुश्किलात से, इन तमाम मुखालिफ कुव्वतों से? वही बचेगा जिसने अपने रब की पनाह ली, शबो रोज उसकी रजा चाही, जिसने उसका बेहतरीन फायदा ले लिया, वही बचेगा। वरना हर आने वाला साल उसकी जिंदगी में मुश्किलात को लाएगा। और वो इंसान हर अगले दिन पिछले दिन से ज्यादा बेचैन देखेगा अपने आप को। कभी देखे ना तो 11 साल 11 महीने के बाद साल में एक महीना आता है, रमजान का महीना, बरकतें, फैज, हसनात, जखीरे आते हैं बड़े बड़े। इस दुनिया के सफर में चलने वाले हर काफिले के लोगों को ये मौका मिलता है कि एक बार फिर ताज़ा दम हो जाए और इस सफरे हयात में आने वाली मुश्किलात
और दिल और दिमाग पर होने वाले हमलों के लिए अपने पास कुव्वत पा ले, ताकत पा ले, नए हौसलों के साथ और नए वलवलों और अटल इरादों के साथ, इत्मीनान के साथ अपना नया सफ़र शुरू करें। कुछ लोग कर लेते हैं तो वो आखिरी वक्त अच्छा पाएंगे, कुछ नहीं पाते, बच्चों की तरह जीते हैं, हर ख्वाहिश पे मचल गए, ये तो लेना है और अब नहीं लेना, अब भूख लग गई, अब नींद आ रही है, बच्चे को देखे नींद आती है तो भी रोता है, भूख लगती है तो भी रोता है, दर्द होता है तो भी रोता है। इसी तरह कुछ लोग हर हाल में शिकवे और शिकायतें करते रहते हैं, हमने अपने आप को पहचानने कि हमने क्या किया, क्या इतना नफ्स मजबूत हो गया कि शैतान से बचेगा पूरे 11 महीने, अंदर ईमान की इतनी शिद्दत आ गई कि जो हमारी सुस्तियों को दूर करने के लिए काफी होगी, ये अब हर इंसान खुद सोचे और अपने आप को पहचाने। आप देखिए कि शायद आप में से किसी ने कभी बिजनेस किया हो, बिजनेस किस चीज का नाम है? बेहतरीन फैसलों का, बर मौका फैसला, 1 मिनट होता है सिर्फ आपके पास, यू हैव टू डिसाइड बेचना है कि नहीं बेचना, आपने थोड़ी देर की कस्टमर चला जाएगा और आप अपनी चीज लेके बैठे रहेंगे, खरीदना है कि नहीं खरीदना, आपके सामने एक ऑफर आती है इसको खरीद लो, इतने का दे रहा हूँ तुम इतने का बेच लेना आगे, आप एक लम्हे के लिए सोचते हैं ले लूँ तो ले लेते हैं, और आप नो कहते हैं तो दूसरा उस पर बोली दे देता है, वो ले जाता है। इसी तरह याद रखिए कि जिंदगी के इस सफर में हम सब तिजारत कर रहे हैं, अगर हमने हर हर लम्हे का सही फैसला ना किया तो वो लम्हा फिर वापस नहीं आएगा, अब आप जितनी मर्जी कोशिश करें कि पिछला रमजान वापस आ जाए, नहीं आएगा, हाँ अगला आएगा अगर जिंदगी रही तो। और अगर हमने इस मौके को खो दिया तो हमारा हाल उस ताजिर की तरह है जिसने वक्त पे फैसला नहीं किया, या उस किसान की तरह जिसने वक्त पे दाना नहीं डाला, कहाँ से फसल आएगी, कहाँ से तिजारत आएगी? जितना कुरान सुना है, अगर उस कुरान ने हमारे कदम नहीं रोके नाफरमानियों की तरफ जाने के, गलत चीज़ों को देखने के, गलत बातों को बोलने के और गलत चीज़ों को महसूस करने के, तो वो कुरान महफूज नहीं हुआ, वो बारिश की तरह बरसा और बाहर से बाहर चला गया, अंदर नहीं जगह दी, दिल की ज़मीन पे उसकी किरणें नहीं पड़ी और हम जैसे थे वैसे ही रहे। उधर तो दिन भर भूखे रहते थे, प्यासे थे, ठंडा पानी मिलता था, खाने भी लजीज थे, मगर क्यों नहीं खाए, क्यों नहीं बचे, क्यों नहीं खाया, मतलब उसको क्यों बचते रहे? इसलिए कि रब ने इसको हराम कहा है, हालांकि सब कुछ हलाल था। 1 महीना पूरा इसकी मशक करवाई अल्लाह ताला ने हम सब से, क्यों कि बाकी 11 महीने में जब सामने ऐसे तमाम जरिए आ जाएं जो रब की नाराजगी के हों, नाजायज, मशकूक, मुश्तबे, तो उसको हाथ नहीं लगाना, उसकी तरफ देखना नहीं है। और आप देखें कि अगर आप टेक्स्ट के अतबार से कुरान पाक में रमज़ान की आयतें देखें, कुतिबा अलैकुम अस्सियाम, उससे आगे आप देखें कि जहाँ रमज़ान का टॉपिक ख़त्म होता है, अगली आयत क्या है, يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. کیا ایمان والو ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ. تو علماء نے اس کی یہی توجیہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں یہی احساس پختہ کیا کہ حرام کی طرف دیکھنا نہیں. اگر کسی کو اعتکاف کی توفیق مل جائے 10 دن, کیا ثبوت دیا اسے کہ قل ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, میرا جینا میرا مرنا میری قربانی میری نماز سب اللہ رب العالمین کے لیے. میں جی سکتا ہوں صرف اسی کے ساتھ رہ کے, مجھے کسی اور کی نہ بھی صحبت ملے تو میں تنہائی میں اپنے رب سے باتیں کر لوں گا. اور اگر واقعی ان تمام جذبات کے ساتھ اگر آپ نے رمضان منایا, وقت کا استعمال بھی کیا, قرآن سے رب بھی جوڑا, تو پھر آپ کو واقعی مبارک ہو. آپ ہی ہیں وہ خوش قسمت کہ جن کے لیے عید واقعی عید ہے. آپ کو کہا جا سکتا ہے کہ عید مبارک ہو, اور اگر یہ نہیں تو پھر سوچنے کی بات ہے, کیا ہم اہل ہیں عید منانے کے؟ کیا کسی کا عید مبارک ہو کہنا ہمارے لیے اس گئے ہوئے سارے لمحوں کو واپس لے آئے گا جو ہم نے ضائع کیے؟ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا بہترین احتساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم نیکیوں کو صرف رسمی طور پہ نہ کریں بلکہ اس کی روحانیت کو قائم رکھیں. اس کے علاوہ بچیں گے نہیں. جو رمضان کے بعد بھی اپنے آپ کو بہتر نہ محسوس کرے, پھر وہ تو کسی معجزے کا انتظار کرے کہ جس کو دیکھنے کے بعد اس کی زندگی میں کچھ نیکیوں کا شوق آ جائے. اور پھر ہم نے ان تمام مواقع کو اپنے لیے یہ بھی دیکھ کے سوچنا ہے کہ یہ ساری ہمارے حق میں حجت بن رہی ہے یا ہمارے خلاف. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اب آپ کو کچھ کہنا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں.